अगली सुबह रसोई घर में सुबह की धूप खिड़की की जाली से छनकर अंदर उतर रही थी। वो धूप सीधी नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई, जो पीतल के बर्तनों पर पड़ते ही हल्की सी चमक पैदा कर रही थी। ऐसी चमक जैसे घर भी नींद से जागकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। चूल्हे पर रखी केतली से उठती चाय की खुशबू पूरे रसोई घर में फैल चुकी थी। अदरक की तीखी महक और पत्ती की गर्माहट मिलकर कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। आज उस खुशबू में कोई पुरानी उदासी नहीं थी। शामली अकेली थी, पूरा घर अभी सोया हुआ था। न आंगन में किसी के कदमों की आवाज, न बरामदे में खांसने की खनक, न ही किसी कमरे से आती सुबह की खटर पटर। बस केतली की हल्की सी सीटी और शामली की अपनी सांसें, और इसी सन्नाटे में उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो अचानक नहीं आई थी, बल्कि रात भर उसके साथ रही थी। कल रात उसने आखिर कही दिया था, जो बरसों से सीने के किसी कोने में दबाकर रखा हुआ था, जो हर बार जुबान तक आकर डर बनकर लौट जाता था। कल वो नहीं डरी, और उससे भी बड़ी बात, उसे जवाब मिला था, विश्वनाथ का जवाब। शामली ने अदरक कूटते हुए अनजाने में ही थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, खुद पर ही हल्की सी हंसी आ गई। उसने चाय में पत्ती डाली और जैसे ही चम्मच घुमाया, चूड़ियों की खनक पूरे सन्नाटे में मीठी सी आवाज बनकर फैल गई। आज उसने हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी, वो रंग जो ना बहुत चटक था ना बिल्कुल भीगा। साड़ी में रेशमी सा बहाव था जो चलते वक्त उसके बदन के साथ नरमी से लहराता था। पल्लू उसने कंधे पर सलीके से रखा था, लेकिन कपड़े की मुलायम बनावट हर हरकत के साथ खुद बखुद अपनी मौजूदगी चपा देती थी। ब्लाउज सादा था, पीठ पर कोई गहरी कट नहीं, बस उतनी की गरिमा भी बनी रहे और नज़ाकत भी। कानों में झुमके थे, ना बहुत छोटे ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़े, चलते वक्त हल्की सी खनक पैदा करते, जैसे हर कदम के साथ कुछ कह रहे हों। उसके बाल खुले थे, न पूरी तरह संवारे हुए न बिखरे हुए, बस ऐसे जैसे उसने जानबूझकर उन्हें वैसे ही छोड़ दिया हो, जिसमें वो खुद को सबसे ज़्यादा खुद महसूस करती थी। आईने में खुद को देखते वक्त आज उसने नज़र नहीं झुकाई थी, वो खुद से भाग नहीं रही थी। चाय तैयार थी। शामली ने कप उठाकर ट्रे में रखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बहूजी, पीछे से आई आवाज़ ने उसे हल्का सा चौंका दिया। वो पलटी, मधु खड़ी थी, हाथ जोड़े, चेहरे पर वही रोज़ वाली संकोच भरी सादगी। बहूजी, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बड़े ठाकुर ने आपको अभी बुलाया है। शामली की भौहें हल्की सी उठी। अभी? हाँ बहूजी, अभी। शामली ने चूल्हे की आंच धीमी की, केतली को एक तरफ खिसकाया। एक पल के लिए उसने ट्रे की तरफ देखा, फिर खुद को संभाला। ठीक है, उसने शांत आवाज में कहा, मैं आ रही हूं। वो ट्रे वहीं छोड़कर रसोई से बाहर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो बरामदे से गुजरी, सामने वाले कमरे से निकलती सुषमा देवी की नज़र सीधे उस पर जा टिकी। शामली का चेहरा आज अलग लग रहा था, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई झुकी हुई आंखें, बस एक स्थिर सी मुस्कान, ना ज्यादा खुली ना छुपी हुई, सिर्फ सुकून से भरी। उसे देखते ही सुषमा देवी के सीने में कुछ कस्सा उठा। मेरा सब कुछ बर्बाद करके भी देखो कैसे खुश घूम रही है। उसकी उंगलियां अपने आंचल को अनजाने में ही कसकर पकड़ गईं। उसी पल पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आ टिका। सुषमा देवी हल्की सी चौंकी। जी जी, वो रत्ना देवी थी। चलो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आंगन में धूप में बैठते हैं, आज धूप बड़ी अच्छी है, चाय भी वहीं पी लेंगे। सुषमा देवी ने एक पल के लिए फिर शामली की तरफ देखा, जो अब आगे बढ़ चुकी थी, फिर बिना कुछ बोले रत्ना देवी के साथ आंगन की ओर मुड़ गई। शामली बड़े कमरे की तरफ नहीं गई, उसके कदम अपने आप उस कमरे की ओर मुड़ गए जो उसका और विश्वनाथ का था। दरवाजा आधा खुला था, कमरा खाली सा लग रहा था। उसने हल्के से दरवाजा धकेला और अंदर झांका। विश्वनाथ जी? कोई जवाब नहीं आया। वो एक कदम अंदर बढ़ी ही थी कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी, नल खुला था। शामली के कदम अपने आप रुक गए, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। आपने, उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा, मुझे बुलाया था? पानी की आवाज जारी रही। कमरे में धूप की एक पतली लकीर खिड़की से उतरकर फर्श पर फैल रही थी, फिर बिस्तर तक जाती हुई। शामली वहीं खड़ी रही, ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी, बस उसी लकीर को देखते हुए उसी पल में ठहरी हुई। आंगन में सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। फर्श पर बनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी आंगन को गर्माहट से भर रही थी। एक कोने में रखी लकड़ी की मेज पर चाय की ट्रे रखी थी, जिससे उठती भाप हवा में घुल रही थी। सुषमा देवी चुपचाप चाय का कप थामे बैठी थी। कप उनके हाथ में था, लेकिन मन कहीं और। उनकी आंखें सामने फैले आंगन को देख रही थी, पर भीतर तस्वीरें कुछ और ही बना रही थी। वही लड़की, शामली का चेहरा उनके जहन में उभर आया। आज सुबह की वो मुस्कान, वो बेफिक्री, वो सुकून।
उनके होंठ अनजाने में सख्त हो गए। मेरे पति की मौत और अब ये ऐसे खुश है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीने के भीतर पुरानी टीस फिर से उठने लगी। अगर वो इस घर में ना आई होती, अगर विश्वनाथ का ध्यान ना भटका होता, उनकी उंगलियां कप को और कसकर पकड़ गईं। रत्ना देवी सामने बैठी थी। वो सुषमा देवी के चेहरे के बदलते भावों को काफी देर से देख रही थी। दीदी, उन्होंने हल्की आवाज में पुकारा, क्या सोच में पड़ गई हो? सुषमा देवी चौंकी, एक पल के लिए जैसे वर्तमान में लौटी हूं। कुछ नहीं, उन्होंने सपाट स्वर में कहा और चाय का घोंट लिया। रत्ना देवी को यकीन नहीं हुआ। नहीं, वो थोड़ी और नजदीक झुकते हुए बोली, आप ऐसे चुप नहीं रहती, कुछ तो बात है। सुषमा देवी ने कप नीचे रखा, उनकी नजर एक पल के लिए जमीन पर गई, फिर सीधे सामने। तुम्हारी बहू, वो रुकी। रत्ना देवी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। विश्वनाथ के काबिल नहीं है, सुषमा देवी ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। उन्होंने बहू नहीं कहा, उन्होंने नाम लिया, श्यामली। उस नाम में अपनापन नहीं था, बस दूरी थी। रत्ना देवी थोड़ी असहज हो गई। दीदी ऐसा मत कहिए, उन्होंने तुरंत कहा, आप जानती हैं मोहिनी के जाने के बाद विश्वनाथ किस हालत में था। सुषमा देवी की भौहें तन गई, रत्ना देवी बोझती चली गई। वो हंसना भूल गया था, हर वक्त गुमसुम रहता था, खुद को काम में डुबोए रखता था पर अंदर से टूट चुका था। उन्होंने एक पल रुककर सुषमा देवी को देखा। इसलिए मैंने ये शादी कराई थी दीदी, उनकी आवाज में सफाई थी पर कहीं ना कहीं अपराध बोध भी। मैं बस चाहती थी कि वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए। आंगन में कुछ पल के लिए बस चाय की भाप उठती रही। सुषमा देवी कुछ नहीं बोली, उनकी आंखें स्थिर थीं लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी।